ओम शांति। बहुत बहुत साल पहले एक दिन जब 18 जनवरी का दिन था, हम इस सेवा केंद्र पर आए थे और तब योग भट्टी चल रही थी, पर हमको ये नहीं पता था योग भट्टी क्या होती है। हमको ये नहीं पता था कि ये संस्था क्या है। हम भगवान को ढूंढ रहे थे और सुबह आए, शायद सबका मौन था तो किसी ने हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछा और हम सुबह से लेकर शाम तक पीछे बैठे रहे। आज जब यहां आ रहे थे तो हमको वो दिन याद आ रहा था जब हमारा जीवन भक्ति की संपूर्ण चरम अवस्था में था और हम भगवान को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते जब उस दिन यहां पहुंचे थे, सारा दिन यहां रुके और फिर चले गए थे। वो दिन और आज का दिन चलो वो तो पुरानी बात है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज की मुरली में एक जगह माया के विषय में बाबा ने कुछ कहा है। मुरली में महावाक्य है कि माया की किसमें आ जाते हैं बच्चे, चक्री में आ जाते हैं। माया अच्छे अच्छे दियों को भी बुझा देती है। तो आज जब हम आ रहे थे इधर तो इसी पर कुछ चिंतन चला और वही चिंतन आप सबके सामने हम रखेंगे। हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज हम आप सभी महान आत्माओं के बीच में हैं और मधुबन की तरफ से, सभी दादियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से, वहां जो एक तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है उसकी तरफ से और स्वयं भगवान की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम कह रहे थे कि आज बाबा ने दिए को याद किया तो अचानक एक विषय जैसे हमारी आंखों के सामने आया और उस विषय का नाम था बुझते दीपक। जो बुझता हुआ दीपक है उसके विषय में ये हम चिंतन कर रहे थे। तो वही चिंतन आज हम आप सबके साथ करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक गुरु, उसका एक अंधा शिष्य था और एक अंधेरी रात जब वो शिष्य कहीं बाहर जाने लगा तो उस गुरु ने उसे एक दिया दिया और उससे कहा कि तुम इस दिए को लेकर जाना क्योंकि रात अंधेरी है। तो वो शिष्य कहने लगा कि मैं तो अंधा हूं, मुझे इस दिए से क्या प्रयोजन, इस दिए का मुझे क्या फायदा, रात कितनी भी अंधेरी हो इस दिए का मेरे लिए क्या प्रयोजन है। तो उसके गुरु कहते हैं ये दिया तुम्हारे लिए नहीं है, अंधेरी रात में कोई तुमसे न टकरा जाए उस दूसरे व्यक्ति के लिए दिया है। तो वो शिष्य कहता है ठीक है और वो दिया लेकर जाता है, परंतु अंधेरी रात में फिर भी एक व्यक्ति उससे टकराता है। तो वो दूसरा व्यक्ति जो उससे टकराता है, आप सबसे प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, उसके हाथ में तो दिया है। दूसरा व्यक्ति उससे आकर टकराता है क्यों? वो भी अंधा होगा, हो सकता है तो शायद वो भी अंधा होगा। एक और दिया बुझ गया होगा, तो और भी कुछ किसका ध्यान? सामने वाले का। अच्छा, कि सामने वाले का ध्यान कहीं और होगा। और उल्टा और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सबसे पहला कारण जो बताया वो बताया कि सामने वाला व्यक्ति भी अंधा है, हो सकता है उसके भी हाथ में एक दिया हो। तो दो व्यक्ति जा रहे हैं, पहला जो कि अंधा है और उसके हाथ में दिया है, परंतु दूसरा भी व्यक्ति है जो टकरा रहा है, वो भी अंधा है और शायद उसके भी हाथ में कोई दिया होगा, ये एक संभावना। दूसरी कि इसका दिया बुझ गया होगा, दिया तो है लेकिन निकल तो पड़ा है परंतु दिया बुझ गया है। और यह भी हो सकता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके हाथ में जो दिया है और वो भी अंधा है और वो भी बुझ गया है, ऐसी बहुत सारी संभावना हो सकती है। हम सभी ब्राह्मणों के हाथ में भी एक दिया है, कौन सा? बाबा किसको दिया कहते हैं? एक दिया है जिसमें एक लव है और घृत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बुझते चिरागों का घृत, बुझते चिरागों का घृत। तो प्रश्न है ये घृत कौन सा है और ये जो प्रकाश है वो कौन सा है? और ऐसा जो कहानी हमने सुनाई उसका क्या अर्थ है? सबसे पहले तो ये जो ज्ञान है, बाबा ज्ञान को क्या कहते हैं? घृत कहते हैं ना, घृत अर्थात तेल, घी जो भी कहो। और दिया मिट्टी का बना हुआ है जिसमें ज्ञान का घृत है और जो ज्योत है वो कौन सी है? वो कौन सी ज्योत है? आत्मा रूपी ज्योत। इसके ऊपर आएंगे हम। हम सभी के हाथ में एक दिया है ज्ञान का, हम भी निकल पड़े हैं इस ब्राह्मण समाज में, हर एक के हाथ में दिया है, फिर भी टकराते हैं। शायद हमारे दिए में जो घृत है वो कम हो गया और दिया बुझ गया। दिया बुझ गया, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास ज्ञान नहीं है। हर एक ज्ञानी है, हर एक के पास संपूर्ण ज्ञान है, उसके बाद भी टकराव है कहीं ना कहीं, इसके बाद भी दिया बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं घृत कम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये घृत जो है वो कम हो रहा है। अगर ज्ञान ही ये घृत है, और यदि हमारे पास इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का और परमात्मा का और आत्मा का और संपूर्ण ज्ञान है, उसके बाद भी ये घृत का कम हो जाना अर्थात क्या? तो आज की ये चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। ज्ञान जैसे हमने कहा हमारे पास बहुत है, फिर भी ज्ञान की परिभाषा क्या है? एक है सूचनाएं, एक है ज्ञान। एक है सूचनाएं, एक है ज्ञान। ज्ञान अर्थात सूचना नहीं, ज्ञान अर्थात इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्ञान की परिभाषा जो है वो है ज्ञान अर्थात स्वरूप, या फिर कहो अनुभव। केवल जानना पर्याप्त नहीं है। लास्ट संडे की मुरली में एक सुंदर महावाक्य आया था मुरली के अंत में, जान तो सब कुछ गए हो, अब क्या बाकी है? स्वरूप और अनुभव करना, ये दो चीजें बाकी है। बाकी जान तो सब कुछ गए हो। तो ज्ञान जिसे कि घृत कहा गया है, और जो कम होने से दिया बुझ जाता है, और दिए का बुझ जाना अर्थात जीवन में विस्मृति आ जाना, अर्थात जीवन में उदासी आ जाना, अर्थात ब्राह्मण जीवन की जो खुशी है, आज की मुरली में वाक्य है ना, नशा रहना चाहिए, खुशी का पारावार नहीं, परंतु अपने को ही चमाट लगा देते हैं। मुरली में वाक्य है आज, अपने को चमाट लगाना, या फिर ये दिया बुझ जाना, या फिर जीवन में उदासी आ जाना। किसके जीवन में? हम संसार की आत्माओं की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की। उनके जीवन में ज्ञान की कमी हो जाना, ज्ञान लुप्त हो जाना, ज्ञान विस्मृत हो जाना, ज्ञान का कहीं खो जाना, सब कुछ होते हुए भी उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे वो कौन से कारण है जिस वजह से ये जो दिया है ये बुझ जाता है? अर्थात ऐसे वो कौन से कारण है जिस वजह से ये जो घृत है कम हो जाता है? ऐसे हम कुछ कारण निकालेंगे। सबसे पहला कारण, ऐसे सात कारण निकालेंगे, और उसमें सबसे पहला एक कारण है ज्ञान में इंटरेस्ट कम हो जाना। हम वो बात नहीं कर रहे कि एक है मुरली सुनना, मुरली सुनाना, मुरली पढ़ना, मुरली पढ़ाना, कोर्स कराना, उसकी बात नहीं कर रहे। ज्ञान में इंटरेस्ट कम हो जाना, ज्ञान में इंटरेस्ट कम हो जाना अर्थात 18 जनवरी पिछले सीजन की सारी मुरली पढ़ाई के ऊपर चली है। 18 जनवरी का दिन है, परंतु बाबा ने उस मुरली में कहीं भी अव्यक्त स्वरूप बनना है, बाप समान बनना है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं की है उस मुरली में। सारी की सारी मुरली किस पर है? पढ़ाई पर। पढ़ाई में शौक होना चाहिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। स्टूडेंट और पढ़ाई न पढ़े ये शौकता नहीं है। टीचर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि जैसे पढ़ाई क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, छप जाती है, छपाई हो जाती है। बाबा को देखो कितना नशा है। तो सबसे एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो है ज्ञान में इंटरेस्ट कम हो जाना। क्यों कम हो जाता है ज्ञान में इंटरेस्ट? ज्ञान में इंटरेस्ट कम हो जाना बहुत गहरा टॉपिक है। क्यों कम हो जाता है ज्ञान में इंटरेस्ट? बहनों की तरफ से बाबा ने उसी मुरली में एक वाक्य कहा था, यदि और किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट चला जाता है, बुद्धि चली जाती है, तो यहां का इंटरेस्ट कम हो जाता है। इस यज्ञ का हमारे जो चार सब्जेक्ट है उसका फाउंडेशन ज्ञान है। ज्ञान में इंटरेस्ट कम हो जाना अर्थात मुरली पढ़ना पढ़ाना उसकी बात नहीं कर रहे हम, केवल ज्ञान में इंटरेस्ट कम हो जाना अर्थात उसका जो मनन है, उसका जो चिंतन है, उसका जो अध्ययन है वो कम हो जाना। मुरली रोज चलती है और आप सब तो मुरली सुनाने वाले हो, परंतु एक होता है एक एक वाक्य का अध्ययन करना, क्योंकि स्पीकर जो बैठा है वो यहां बैठा है, ऑडियंस नीचे है, उसकी स्थिति यहां है, वो अव्यक्त स्थिति में है, हम व्यक्त में है। उसके कहे हुए बोल को समझने के लिए हमारी स्थिति भी उतनी ऊंची चाहिए, तो ही उसके वाक्यों को हम समझ सकेंगे। हिंदी में ऐसे चार शब्द हैं, एक है भावार्थ, एक है शब्दार्थ, एक है गुणार्थ, एक है वाक्यार्थ। साधारण से दिखने वाले उसके शब्द बहुत गहरे हैं, उसके शब्दों को भी समझना है शब्दार्थ। वो जो वाक्य जो वो उच्चारण कर रहा है उस वाक्य को भी समझना है, इस वाक्य का क्या अर्थ है। क्या केवल शब्दों को पकड़ना है, क्या है उस वाक्य के अर्थों को समझना है। वाक्यार्थ एक है, गुणार्थ, गुण अर्थ क्या है इसमें। जैसे कि मुरली में दो शब्द आते हैं, एक है नेमिनाथ जो बाबा कब प्रयोग करते हैं, अमृत वेले के लिए प्रयोग करते हैं कि बच्चे आते हैं और नेमिनाथ के जैसे बैठ जाते हैं। दूसरा मुरली सुनने के लिए एक शब्द प्रयोग आता है, वो कौन सा? जो मुरली सुनते समय ध्यान इधर उधर रहता है उनके लिए एक शब्द है, कौन सा? तवाई। दो शब्द है, एक शब्द है योग के लिए और एक शब्द है ज्ञान के लिए। ऐसे बाबा बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके गूढ़ अर्थ को समझना, गूढ़ार्थ। तो मुरली समझना, भगवान के महावाक्यों को समझना, उसके लिए उतना इंटरेस्ट उसमें चाहिए। क्या हमारा इंटरेस्ट उसमें है, ये प्रश्न अपने आप से पूछना है। कितना इंटरेस्ट? अगर कोई स्टूडेंट हो और उसकी एग्जाम सामने हो, सब कुछ छोड़ देता है वो और पढ़ाई में लग जाता है, उसको बाकी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, परंतु जब एग्जाम सामने होती है तो सब कुछ अपने आप छोड़ जाता है, क्या वैसा इंटरेस्ट है, वैसी रुचि है? तो सबसे पहली चीज है ज्ञान में इंटरेस्ट। यह इंटरेस्ट कम होने के कुछ बहुत सारे कारण आज है हमारे सामने। ऐसे वो कौन से कारण है जो ज्ञान को छोड़कर बुद्धि वहां चली जाती है? एक कहानी हमें बहुत पसंद है, जो हमें एक दो बार जिसे हमने सुनाई है, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो जब भी सोता है तो उसे अपने खटिया के नीचे सांप, बिच्छू, अजगर और बहुत खतरनाक प्राणी दिखते हैं। बहुत सारा इलाज करता है, बहुत सारे मनोचिकित्सक के पास जाता है, कहीं कोई इलाज नहीं होता है। उसका वो भय बना ही रहता है, जैसा ही सोता है सारे प्राणी उसे अपने खटिया के नीचे दिखते हैं। कई समय से परेशान, जब भी उठता है तो दुखी होकर उठता है, घबराहट में उठता है, डर लगता है उसको। सब आसपास वालों को पता है कि उसे यह स्वप्न दिखता है, और अचानक एक दिन बहुत ही खुशी खुशी से उठता है और झूमते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसे लोग पूछते हैं क्या हुआ, वो कहता है समस्या हल हो गई। क्या हुआ होगा, जिन्होंने ये कथा कहानी सुनी नहीं है वो बताइए क्या किया होगा। ऐसा क्या हुआ कि अब उसकी ये समस्या रही नहीं। वो कहता है मेरा एक बहुत दूर का भाई आया जो कि कारपेंटर है, और उसने खटिया के चार पैर ही काट दिए। चार पैर अगर इनको काट दिया जाए तो शायद ज्ञान में इंटरेस्ट हो जाए। एक है टीवी, दूसरा है मोबाइल, तीसरा है इंटरनेट, और चौथा है सारे सोशल नेटवर्क, जितने मीडिया आज वर्तमान समय ब्राह्मण जिस तरह इन सभी में फंसे हैं, कभी कभी लगता है कि हम किस लिए आए थे यहां पर। याद करो वो दिन जब हम इस यज्ञ में आए थे, किन उमंगों से आए थे, क्या संकल्प लेकर आए थे। पीछे मुड़कर देखना है कि कहीं हम फंस तो नहीं गए हैं इन सभी बातों में। सेवा के लिए साधनों का प्रयोग करना ये बहुत अच्छी बात है, परंतु साधनों के अधीन होकर सेवा करना या साधनों में ही लिप्त हो जाना, साधनों में ही खो जाना, यह श्रीमत नहीं है। लास्ट सीजन की मुरली में बेबी बाबा ने इस बात के बारे में अटेंशन दिलाया था, टू मच में नहीं जाना है किसी भी साधन के। विदेश में एक शब्द प्रयोग होता है स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम कितना है, देखने का टाइम स्क्रीन को। तो कहीं हमारी बुद्धि इन सब में तो नहीं खो गई, हम कहीं इनमें तो नहीं भटक गए। स्वयं स्वयं से पूछना है। तो सबसे पहला बताया इंटरेस्ट, दूसरा ज्ञान का मनन, ज्ञान के मनन की कमी। कई बार मुरलियों में आया है जाना, मुरली सुनना और वापस आ जाना, यह है पुरानी चाल। जैसे गाय जो होती है वो क्या करती है, उगारती है। जो गाय नहीं उगारती उसे क्या कहा जाता है, बीमार। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। साकार महावाक्य है बाबा के, ज्ञान का मनन करना, ज्ञान का चिंतन करना। ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता है, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि मुरली में शायद ही ऐसे कोई महावाक्य हो गए जो हमने सुने नहीं है, परंतु क्या हमने उस पर चिंतन किया है, क्या वो महावाक्य मेरा बना है। अपना बनाना, उसे वहां से निकालना और उसे अपना बनाना, क्या ये किया है। महावाक्य तो आ गया। आज भी कहा ना बाबा ने, वो लोग आते हैं मुरली सुनते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं कि आ जाओ भगवान आया है, और फिर बाद में क्या कहते हैं, जाकर शादी करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि तुम तो कहते थे भगवान आया है, तुम तो कहते थे हम भगवान की पढ़ाई पढ़ते हो, अब क्या हुआ? वो कहते हम तो बस ऐसे ही किसी से सुन लिया था, सुना था वो कह दिया, जो सुना था केवल कह दिया, जो जो हम दूसरों को सुनाते हैं स्वयं को सुनाते हैं। जो भी ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाते हैं वो स्वयं के मन को सुनाना है। दिखाया है तुलसीदास, वो कहता है कि श्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये जो रघुनाथ गाथा मैंने लिखी है रामचरितमानस, किसके लिए लिखा है? तुलसीदास कहते हैं विश्व दुनिया के लिए नहीं, स्वयं के लिए। मैंने स्वयं ही अपने मन को ये सुना रहा, सुनाने के लिए लिखा है, और इसी से मुझे पावा परम विश्राम, परम विश्राम की प्राप्ति हुई है। स्वयं स्वयं से बात करना, स्वयं स्वयं को सुनाना, ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन करना, मनन करना। इसमें चार प्रश्न हैं। एक, क्यों करना? दूसरा, कब करना? तीसरा, कहां करना? और चौथा, कैसे करना? सबसे पहला, क्यों करना? क्यों करना है ज्ञान का मनन? एक दो कारण तो सुना है, फिर भी और? हरेक को करना है, हरेक को क्यों करना है मनन? व्यर्थ संकल्प से मुक्ति, जब तक ज्ञान का मनन नहीं तब तक व्यर्थ चलता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से व्यर्थ आता ही रहेगा, कोई ना कोई आत्मा व्यर्थ किए उत्पन्न करने की निमित्त बनेगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि हम दूसरों को तो बदल नहीं सकते। एक रीति से, क्योंकि हरेक का पार्ट अपना अपना है, हरेक के हिसाब एक दूसरे के साथ है, और ब्राह्मणों के हिसाब किताब सबसे ज्यादा किसके साथ है? ब्राह्मणों के साथ। और ब्राह्मणों के हिसाब किताब चुक तो भी किनके साथ होंगे? ब्राह्मणों के ही साथ। संसार वालों से इतनी हिसाब किताब नहीं है, यहां है सारे हिसाब किताब, यहां ही चुप्त करने हैं। इसके लिए ज्ञान का श्रेष्ठ मनन, इसके लिए चिंतन करना आवश्यक है। तो एक पॉइंट हुआ व्यर्थ से मुक्ति, दूसरा खुशी। जैसे ही हम ज्ञान की पॉइंट्स का मनन करते हैं व्यर्थ स्वतः ही विलीन होने लगता है, नहीं तो मन में व्यर्थ ही चलते रहता है, व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है, इतना व्यर्थ है आसपास। जब तक अपनी स्थिति को ऊपर नहीं ले जाते तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो खुशी, तीसरा और क्या होता है मनन से? दूसरों को हम अच्छे से सुना सकते हैं, अभी जैसे सुना रहे हैं उससे और अधिक स्पष्टीकरण, और सभी को पता है नया कुछ भी नहीं है। और क्या होता है मनन से? बाबा ने बहुत सारे महावाक्य कहे हैं, क्या होता है? भाइयों की तरफ से मगन अवस्था, मनन से मगन। जो अवस्था योग में आती है वही ज्ञान से भी आ सकती है। ज्ञान की पराकाष्ठा और योग की पराकाष्ठा कहीं ना कहीं समान है। मनन से मगन अवस्था आएगी, मगन अवस्था ईश्वरीय प्रेम की अवस्था है, और जो व्यक्ति मगन रहता है आसपास जो कुछ हो रहा है उसके प्रभाव से मुक्त रहता है स्वतः ही, और मन को खुराक मिलती है और चौप चीनी। बाबा कहते हैं ना ज्ञान क्या है? चौप चीनी, मुरलियों में आता है ये शब्द, टॉनिक, संजीवनी बूटी। और ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान के मनन से आत्माभिमानी स्थिति और योग में मदद। ऐसा नहीं कि बाबा के कमरे में जाकर हमारा योग शुरुआत हो और बाबा के कमरे को छोड़ते ही योग समाप्त हो। जैसे कि काम था एक, वो बाबा के कमरे में जाके पूरा कर दिया, अभी कुछ और, ये ना हो। तो मनन क्यों करना है, एक दूसरा कब करना है, सर्वश्रेष्ठ समय है कब का, अमृत वेले के बाद का समय। इस क्लास में ऐसे कितने हैं जो अमृत वेले के बाद सो जाते हैं? अमृत वेले के बाद सोना अर्थात की कमाई चट करना। अमृत वेले के बाद का समय जो है श्रेष्ठ चिंतन का समय है। हमारे पास टाइम नहीं है, फिर दिन भर में बहुत सारे कारण है, बहुत अच्छी नींद आती है, आधे घंटे में पूरी अच्छी, दो घंटे की नींद पूरी होती है, बहुत सारे कारण है जो सभी ब्राह्मण देते हैं। परंतु यही तो समय है जब हम अभी अभी योग किए हैं, मन आत्माभिमानी स्थिति में है, और फिर सीधा ज्ञान में उसको लगाया जाए तो ज्ञान हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस समय को जो सफल करते हैं उनकी स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाती है, स्वतः ही स्थिति महान हो जाती है। और इस यज्ञ में सबसे आगे कौन है? जिनकी स्थिति महान है। कौन कितने साल से है इसका स्थिति से संबंध नहीं है। ज्ञान में कितना समय से चलने से ज्यादा ज्ञान हम में कब से चल रहा है वह अधिक महत्वपूर्ण है। जिसकी स्थिति आगे वो आगे, जिसकी पवित्रता श्रेष्ठ वो आगे, जिसके मन में अभी भी देह भाव, देह का आकर्षण खींचता है उसको, वो पीछे। सीधा हिसाब है, प्यूरिटी एंड स्थिति दो चीजें। तो स्थिति बनाने का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? अमृत वेला। और उसके बाद का समय हमारा किसमें लगे? मुरली के श्रेष्ठ चिंतन में। कब कहाँ करना है चिंतन, ये और एक प्रश्न है। कहाँ बैठकर चिंतन करें? बहुत सारे स्थान हैं जहां किए जा सकते हैं, परंतु फिर भी छत के ऊपर। और बहनों की तरफ से कहां बैठकर चिंतन करना है? चिंतन करना तो है या नहीं करना है? करना है, पर कहां? जोर से कहां, कहां बैठ के? आवाज बहुत कम है। कमरे में हम ऑप्शन देते हैं, कमरे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन कहां होता है? बाबा के कमरे में, और बेडरूम, बाथरूम कहां होता है? सर्वश्रेष्ठ चिंतन का स्थान है प्रकृति, प्रकृति का सानिध्य। वैसे तो कहां पर भी हो सकता है जिन्हें आदत है, फिर भी सर्वश्रेष्ठ चिंतन कहां होता है? निसर्ग के सानिध्य में, छत पर। जब तक वहां नहीं जाते तब तक मन जैसा बंद रहता है कमरे में, वो खुलना चाहिए। गार्डन, नदी, झील, झरने, पहाड़, समुद्र, ये सारे प्रकृति के स्थान हैं। परंतु आप कहेंगे ये सब में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। परंतु ये सेंटर, ये सेवा केंद्र तो ऐसी जगह है कि जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है आसपास, एकांत है। बाबा पादरियों का उदाहरण देते हैं ना, क्या करते हैं वो लोग, एकांत में जाकर माला फेरते, क्राइस्ट को याद करते हैं। तो एकांत, मौन और अंतर्मुखता, बिना इन तीन चीजों के अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती। एकांत, मौन और अंतर्मुखता। हमारा मन जितना गहरा होगा उतने ही हम अंतर्मुखी होंगे और ज्ञान का मनन चलेगा और ज्ञान के मनन से ही स्थिति ऊपर उठेगी। केवल स्वभाव में प्रश्न पूछने से हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें मिलने वाला नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, किसी किताब में हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, हमारा प्रश्न का उत्तर अंदर से ही आएगा और हमारे पास ये उत्तर और किसी के पास नहीं है, चाहे हमारी आज वर्तमान में कोई भी स्थिति हो। उत्तर इधर है, ना तो अलौकिक के पास उत्तर है ना ही लौकिक के पास उत्तर है। जो आश्रम में रहने वाले हैं कभी कभी ये सोचते हैं कि शायद लौकिक से उत्तर मिल जाए, ना तो उधर ना तो इधर, उत्तर अवचेतन मन में समाया हुआ है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ही है और वो हमें ही ढूंढना पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे उत्तर को नहीं ढूंढ सकता। कोई ला कर भी देते ये करो तो शायद हम नहीं करेंगे, रेडीमेड उत्तर मन स्वीकार नहीं करता है। तो उसके बाद कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण चौथा प्रश्न है। मुरली पढ़ लिया, मुरली का एक बार पढ़ लेना, यहां बैठकर सुना देना, परंतु मनन कैसे करें, क्या करें मनन के लिए? मनन के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। मनन के लिए सबसे पहला तो एसोसिएशन, लिंक, एक मुरली को दूसरी मुरली से लिंक करना। आज बाबा ने ये कहा इसके पहले इसी बात के लिए और क्या कहा था, एक वरदान को दूसरे वरदान से जोड़ना, एक स्लोगन को दूसरे स्लोगन से जोड़ना, साकार को व्यक्त से जोड़ना, एक नाम है एसोसिएशन, एसोसिएट करना। दूसरा है कि जो भी हम महावाक्य पढ़ते हैं, जैसे आज की मुरली से ले लो, आज की मुरली में वरदान में क्या था, अंदर विश्लेषण में किस विषय पर था, किस विषय पर था वरदान, विजय रत्न, विजय का तिलक लगा हुआ हो, मैं विजय रत्न हो तो स्वतः ही सेवा में सफलता समाई हुई है। जिस भी स्थान पर सेवा करने जाओ तो वहां क्या करो, सबसे पहले क्या करो, सर्च लाइट देनी है उस स्थान को, सर्च लाइट की रोशनी से बुलाना नहीं पड़ेगा फिर आत्माओं को, आत्माएं स्वतः ही आ जाएगी। यह था श्लोक, ये था वरदान, परंतु इतना पढ़कर रुक नहीं जाना है, अब इसको आगे बढ़ाना है चिंतन को। समान कौन सा है, मैं विजयी रत्न हूं। योग का प्रयोग कौन सा है इसमें, कि बाबा जैसे बैठे हैं सूक्ष्म वतन में, हम बाबा के पास हैं और बाबा स्वयं तिलक लगा रहे हैं, विजयी भव। किन बातों में विजयी, दो वरदान है इसमें, एक है विजयी एक है सफलता मूर्त भव। विजयी है पांच विकारों पर, सफलता है सेवाओं में। दो वरदान रोज बाबा से लेना है और जो स्थान की सेवा करने जा रहे हो वहां क्या करना है, सर्च लाइट देनी है। इस नागपुर की भूमि में कहां बहुत बड़ी सेवा होने वाली है, शांति सरोवर में तो सभी सर्च लाइट देते हो, कौन कौन देते हैं, हाथ खड़ा करो, बस मैंने नहीं देती। कल रात मधुबन में हमने एक कमेंट्री बनाई है, दो छोटी छोटी कमेंट्री, हमको किसी ने कहा था यहां से कि एक कमेंट्री बनाओ, तो कल की भट्टी की शुरुआत उसी कमेंट्री से करेंगे जिसमें विश्व शांति सरोवर को सकाश, हर एक अपनी कमेंट्री बनाए, परंतु ये कार्य रोज करना है। केवल वो जगह नहीं जहाँ भी हम कोर्स करने जाते हैं, जिसका भी कोर्स करते हैं, उस आत्मा को सुबह अमृत वेले इमर्ज करना और अमृत वेले उसका कोर्स कराना, फिर शाम को स्थूल पहले ही सकाश देना, पवित्रता की किरणें देना, ज्ञान की किरणें देना, उसका आह्वान करना, आत्माओं को आह्वान करना, आत्माओं को बुलाना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं को माफ करना, आत्माओं से माफी मांगना, ये सारे कार्य अमृत वेले के हैं। तो क्यों करना, कब करना, कहाँ करना, कैसे करना, कैसे करना तो बहुत विस्तार है, दो दिन जो भट्टी है उसमें हम इसका विस्तार और देखेंगे। ये था दूसरा पॉइंट। कौन सा? पहला था इंटरेस्ट की कमी, जिससे घृत कम हो जाता है और दिया बुझता है। दूसरा था मनन। तीसरा है अध्ययन। किस चीज का अध्ययन करें? एक तो मुरली, एक तो साकार मुरली और दूसरा अव्यक्त मुरली का। रोज साकार मुरली यहां तो पढ़ते ही है या पढ़ाते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप में हरेक ने अव्यक्त मुरली का अध्ययन करना है। एक अव्यक्त मुरली रोज, या फिर स्पार्क की छोटी छोटी किताबें हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, उसका अध्ययन करना, थोड़ा सा ही पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ना पर ज्यादा समझना, ज्यादा अध्ययन करना, ज्यादा मनन करना, ज्ञान का अध्ययन। जब तक ज्ञान का अध्ययन नहीं, आत्मा में बल नहीं भरता। हमारी जो दिनचर्या है मधुबन में जो लगी हुई है, हर बुक में लिखी रहती है डायरी के, उसमें एक शब्द है स्वाध्याय। पढ़ाया सभी ने स्वाध्याय? स्वाध्याय अर्थात स्वाध्याय अर्थात भारत में पाठ शब्द आता है एक, पाठ करना अर्थात हरिपाठ, गीता पाठ, भागवत का पाठ, रामचरित्र मानस का पाठ, पाठ अर्थात बार 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 पढ़ना, स्वाध्याय, स्वयं स्वयं को पढ़ाना, श्रेष्ठ अध्ययन करना। किसका अध्ययन करेंगे? एक तो कहा मुरली का, दूसरा किसका अध्ययन करेंगे? किस चीज का अध्ययन करेंगे? अध्ययन के लिए हमारे पास कुछ है या नहीं है? किस चीज का अध्ययन करेंगे? प्रश्न ये है। ज्ञान का लिटरेचर हमारे पास क्या क्या है? ओवरऑल एक तो मुरली, साकार अव्यक्त, दूसरा ज्ञानामृत और बुक्स है बहुत सारी, जगदीश भाई की लिखी हुई बुक्स और अनुभव की बुक्स है और क्लासेस है बहुत सारी क्लासेस, दादियों के अनुभव, एक एक अनुभव जीवन को परिवर्तन करने वाला अनुभव है, क्योंकि हम यहां हैं। तो एक बात हमें याद आ रही है पुष्पा रानी दीदी जी के बारे में, उनके जीवन में सबसे पहले जो इच्छा उत्पन्न हुई थी परिवर्तन की, वो किसको देखकर उत्पन्न हुई थी? उनका कोर्स किसने कराया था? मनोहर इंदिरा दादी ने, अनुभव में लिखा है ना कि मुझे भी अपना जीवन ऐसा बनाना है, ये संकल्प आना, कितनी कम उम्र थी, 14 साल केवल, इतनी कम उम्र में ये संकल्प आना कि जीवन के विषय में आत्मा विचार कर रही है, जबकि संसार के लोग विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, और यहाँ ये आत्मा क्या संकल्प कर रही है कि जीवन श्रेष्ठ कैसे हो जाए, महान कैसे हो जाए। उस उम्र में लिखा हुआ बाबा को पत्र, और बाबा ने बिना देखे ही अनुमति दी सेंटर पर रुकने की। कुछ तो देखा होगा ना, कोई तो महानता को जाना होगा, है ना, सब लिखा हुआ, और आपने तो अनुभव किया है यहां पर। तो अध्ययन, स्वयं को अध्ययन में बिजी रखना है। मुरली का, अव्यक्त वाणियों का, स्पार्क की किताबों का, और ज्ञानामृत का, मैक्सिम्स का, और भी बहुत सारी मैक्सिम्स है, लेख का, अनुभवों का, ज्ञान की क्लासेस का, सब कुछ। और केवल सुनना नहीं, क्लासेस सुनते हैं तो उसके नोट्स निकालना है, और फिर उन नोट्स का रिवीजन करना है। केवल सुनना नहीं, नोट्स का रिवीजन करना बाद में। तो कितने हो गए, पहला वृत्त क्यों कम हो जाता है, पहला कारण इंटरेस्ट की कमी, दूसरा कारण मनन की कमी, तीसरा कारण अध्ययन की कमी, और चौथा कारण ज्ञान के चर्चा की कमी। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं ब्राह्मणों का कर्तव्य है क्या, ज्ञान की चर्चा करना, आपस में ज्ञान की चर्चा करना। क्यों आवश्यक है यह चर्चा करना, व्यर्थ बातों से मुक्त। यदि दो ब्राह्मण मिले तो केवल ज्ञान की चर्चा हो, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, कौन से सेंटर में क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट टू यू। बाइबल में एक जगह उदाहरण है कि जीसस क्राइस्ट जिसमें पुनः वापस आता है रिजरेक्शन के बाद, तो एक शिष्य उससे बहुत सारे प्रश्न पूछता है, पीटर पूछता है कि आपका क्या मुझसे प्यार है, वो कहता है हाँ, और अपने बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछता है, ऐसे प्रश्न, इसका क्या, और आप मेरे से कितना प्यार करते हो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछता है। और फिर पूछता है ये जो पीछे है जॉन, जो दूसरा शिष्य है, इसके विषय में आपका क्या ख्याल है, इससे आप कितना प्यार करते हो। तो जीसस क्राइस्ट उससे कहता है व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना देखो, वो मेरा और उसका है, तुम्हें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, कौन से सेवा केंद्र में क्या चल रहा है, कौन बहन कहाँ है, कौन भाई कहाँ है, मधुबन में क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है। क्या यह चिंतन करके स्थिति श्रेष्ठ होने वाली है, क्या परचिंतन करके आज तक किसी का कल्याण हुआ है। परचिंतन बाबा ने कहा धूल है, परदर्शन मिट्टी है, इन दोनों से परे। कौन क्या कर रहा है यह देखना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो हो रहा है वो होने दो, वो ड्रामा में नूंद है। कल की मुरली में था अच्छा बुरा, सब ड्रामा में नूंद है, फुल स्टॉप। उनकी बातों में दूसरों की के पर्सनल अफेयर्स, सारा ही जीवन दूसरों को देखने में हमारा ना चले जाए। आत्मा की उन्नति कब करेंगे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति क्या करेंगे। क्या जीवन का लक्ष्य केवल दौड़ते रहना है, भागते रहना है, और हाथ में कुछ भी नहीं। भगवान को जीवन देने के बाद जीवन में दिव्यता आ जानी चाहिए, महानता आ जानी चाहिए, श्रेष्ठता आ जानी चाहिए। वही दुख, वही उदासी, वही फ्रस्ट्रेशन अगर है तो हमने और संसार की आत्माओं में क्या अंतर। अगर हम कहीं दौड़ रहे हैं, विदेश में किताब लिखी गई है एलिस इन वंडरलैंड, लेविस कैरोल, उसने दिखाया है छोटी सी बच्ची है एलिस नाम की, वो एक स्वप्न देखती है, स्वप्न लोक में वो एक खरगोश होता है उसके पीछे पीछे उस बिल में घुस जाती है और नीचे गिरती है और एक नए लोक में प्रवेश करती है। वहां सब कुछ अद्भुत है, स्वप्न लोक, परीलोक, वंडरलैंड है। वो वहां पे दिखाया है कि वो भाग रही है, जोर से भाग रही है, उसे बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, और सामने रानी एक खड़ी है और वहां एक वृक्ष है। वो भाग रही है, जोर से भाग रही है, परंतु जितनी भाग रही है वही है, आगे बढ़ी नहीं रही है, पर भाग बहुत जोर से रही है। सुबह फिर दोपहर हो गई, फिर भी भाग रही है, पसीना आ रहा है, देख रही है तो वो वृक्ष वही है और वो भी वही है। शाम हो गई, फिर भी वही है, तो वो रानी से पूछती है कि मैं क्या करूं, मैं तो इतना तेज भाग रही हूं। वो रानी उसको एक तर्क देती है, शायद तुम जो भाग रही हो उसकी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी तुमको। क्या कहती है वो रानी उसको, तुमको स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी, परंतु मनुष्य जो है वो भी ऐसा ही भाग रहा है। अगर उसको कहो कि ये प्राप्त नहीं हुआ तो वो ये सोचता है क्योंकि मैं कम भाग रहा हूं, और भागना चाहिए, शायद मिल जाए। परंतु इस संसार में इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। महात्मा बुद्ध ने एक जगह कहा है, इच्छाएं दुष्पूर है, हिंदी शब्द है दुष्पूर, अर्थात कभी भी तृप्त न होने वाली। संसारिक जो भी इच्छा है वो वैसी ही है जैसी एलिस भाग रही है, परंतु है वहीं, इतना भागने के बाद भी कुछ हाथ में नहीं है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तो हमारी दौड़ भी जीवन की ऐसी ना हो जाए कि हाथ में कुछ भी नहीं आए और हम भाग रहे और सोच रहे कि वो मिला क्यों नहीं, तो और भागना तेज करना है, परंतु ये भागना विपरीत दिशा में है, परमात्मा की दिशा में नहीं है, तो ये भटकना ही है। तो हम चर्चा कर रहे थे ज्ञान की चर्चा करना। चर्चा के लिए दो लोगों की आवश्यकता है, हो सके तो रात में, जो रात का समय है 8:30, या आपको जब भी टाइम मिलता है दो लोग बैठकर ज्ञान का चिंतन करें, जो मुरली सुबह चली है उसका अध्ययन करें, रिवाइज करें, आज क्या क्या सुनाया गया, कौन सी नई पॉइंट थी, कौन सी पावरफुल पॉइंट थी, कौन सी ऐसी पॉइंट थी जो प्रैक्टिकल में लाई जा सकती है। तो ये कितनी बातें हो गई, 4। सबसे पहला ज्ञान का इंटरेस्ट, सोचना है क्या हम करें कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, उसमें नवीनता लानी पड़ेगी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता लानी पड़ेगी। क्या ऐसा करें कि रचनात्मक हो जाए, वही 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 चीजें करते रहे तो बोरिंग हो जाती है। तो क्रिएटिविटी सबसे पहला, ज्ञान में इंटरेस्ट, दूसरा ज्ञान का मनन, तीसरा ज्ञान का अध्ययन, चौथा ज्ञान का की चर्चा, पांचवा जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो है पवित्रता। जब तक बुद्धि पवित्र नहीं, ये ज्ञान उसमें बैठ ही नहीं सकता। देह, देह के संबंध, देह की इच्छाएं, देह की प्राप्ति और देह की वासनाएं जब तक चित्त को आंदोलित करती है, ये मन शांत नहीं हो सकता है। इसके लिए इस यज्ञ का फाउंडेशन ही क्या है, पवित्रता। और ये एक ऐसा विषय है कि जितना इस पर स्टडी करो और अध्ययन करो उतना ये गहरा है। हर दिन पता चलता है कि ये और अधिक कैसा गहरा हो, स्वप्न भी पवित्र हो जाए, व्यर्थ संकल्प चलना भी अपवित्रता है। यहां तक बाबा ने पवित्रता की परिभाषा दी है, और पवित्रता का फाउंडेशन जो है वो है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य जो खंडन होता है, आज इस समाज में जितने भी साधन जो हमने 4 पैर सुनाए, वो श्रेष्ठतम हथियार है ब्रह्मचर्य के खंडन के। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, क्योंकि आत्मा ने जन्म जन्म भोगा है काम विकार को, थोड़ी सी आग की आवश्यकता है, चिंगारी काफी है, बस लगी और आग धधकी, भभक उठती है आग, इसके लिए सबसे ज्यादा काम जो करना होता है वो किस पे करना है? हमारी पवित्रता पर। और ये पवित्रता तभी अखंडित रह सकती है जब इतना श्रेष्ठ हमारे पास ज्ञान हो, अन्यथा नहीं। ब्राह्मण बन गए, केवल अविवाहित रहना ये ब्रह्मचर्य की परिभाषा नहीं है। वो तो संसार में हजारों लाखों लोग रहते हैं, उससे आत्मा में दिव्यता नहीं आती है। ब्रह्मचर्य बल बन जाए, ब्रह्मचर्य तेज बन जाए, ब्रह्मचर्य वाणी का तेज बन जाए, ओज में परिवर्तन हो जाए, उसके लिए साधना की आवश्यकता है, श्रेष्ठ साधना की आवश्यकता है, महान तपस्या की आवश्यकता है। और वो तपस्या यहीं रहकर करनी है, इस संसार में रहकर वो तपस्या करना, इस कलयुगी वातावरण में, इस तमोप्रधान वातावरण में, इस विकारी वातावरण में, जहां हवाओं में काम वासना है, ऐसे वातावरण में रहते हुए हमें ब्रह्मचर्य की सर्वश्रेष्ठ साधना करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि स्वयं भगवान उनका आदेश है, वो कह रहा है। इसलिए इसके लिए हमारी प्योरिटी क्या हो? बढ़ती जाए। कल जो थी और आज जो है वो आगे हो। कल जो स्वप्न था, आज जो स्वप्न है वो आगे हो। कल जो संकल्प था, आज जो संकल्प है वो उससे आगे हो। तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने एक मुरली में परिभाषा दी है, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात एक सेकंड पहले जो स्थिति थी उससे आगे। सेकंड की बात कर रहे हैं हम, दिन की बात कर रहे हैं, कम से कम दिन तो। तो प्यूरिटी, संपूर्ण प्यूरिटी, संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि जीवन में श्रेष्ठता, पवित्रता ही श्रेष्ठता है। पवित्रता ही रॉयल्टी है, पवित्रता ही पब्लिसिटी है, पवित्रता ही रॉयल्टी है, पवित्रता ही ऑनेस्टी है, पवित्रता ही ब्यूटी है, पवित्रता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। संसार में आज जो भी ग्लानी हो रही है सारे धर्मों की किस साथ किस वजह से हो रही है? अपवित्रता की वजह से। सन्यासियों में बल नहीं रहा, क्यों? कहीं ना कहीं उनमें भी अपवित्रता है। जितने आश्रम है संसार में और मठ है, वहां के सन्यासियों की स्टडी करो तो पता चलेगा कि आंतरिक में कहीं ना कहीं उदास है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? एक ही कारण है, या फिर इस यज्ञ से जो भी आत्मा आज तक बाहर गई है, क्यों गई है? कहीं ना कहीं पवित्रता की का खंडन। बाहर से बहुत सारे दूसरे कारण दिख रहे हैं। बाहर से कारण दिख रहा है इसका इसके साथ झगड़ा हुआ, ये इसको ठीक नहीं लगा, ये सेवा ठीक नहीं मिलने की। बाहर से कारण हजार है, अंदर से कारण एक ही है, इम्प्यूरिटी। और ये इम्प्यूरिटी तब आती है जब ज्ञान और योग को छोड़कर कहीं और आत्मा भटकती है। केवल सेवा 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 में कहीं खो गई है। सेवाओं का तो इतना विस्तार है जैसे जंगल है। ऐसा ना हो जाए कि सेवा करते करते हम यही भूल जाए सेवा किसकी है, किस लिए कर रहे हैं। वो संदेश याद है अव्यक्त बाप दादा का, जब पहली बार मुंबई में प्रदर्शनी, बहुत बड़ा मेला लगा था मुंबई में, अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया था गुलजार दादी के द्वारा। दादा ने कहा था बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की, बाप दादा बहुत खुश है बच्चों की सेवा पर, बहुत अच्छी। एक पेज का बाबा ने संदेश भेजा, लास्ट में एक महावाक्य था, लेकिन बच्चे बाप को भूले हुए हैं। क्या कहा बाबा ने? लेकिन बच्चे बाप को भूले हुए हैं। ऐसा ना हो कि जिसकी सेवा कर रहे हैं वही भूल गया। आज की मुरली में स्लोगन क्या है? जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करने वाली सेवा है, ऐसी सेवा करने से तो न करना अच्छा है। जो सेवा हमें डिस्टर्ब करते, खुशी गुम करते, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए,
निंदा है, व्यर्थ संकल्प चढ़े, ईर्ष्या और घृणा का भाव उत्पन्न करे मन में। बाबा ने कहा है, जब तक किसी एक आत्मा के भी मन के प्रति हमारे मन में घृणा है, हम संपूर्ण नहीं बन सकते, सिंगल सोल। और यदि वो ब्राह्मण आत्मा है तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। एक आत्मा के प्रति भी घृणा है, एक सिंगल, शायद वो आत्मा वो होगी जिसने हमें बहुत सताया है, बहुत हमारी उसने ग्लानी की, बहुत हमारी निंदा की, हमारे विरोध में षड्यंत्र किए, ऐसी वो आत्मा है। हमें जीने नहीं दिया, जब से ब्राह्मण बने तब से हमारी पैर, हमारा पैर खींच रही है। किसी भी एक आत्मा के प्रति यदि हमारे मन में घृणा, ईर्ष्या और द्वेष है, हम संपूर्ण नहीं बन सकते। संपूर्ण बनना यह लक्ष्य है। तो जहां हम स्वयं को परमात्मा प्रेम में डुबो रहे हैं, वहां हमारे हृदय में किसी भी आत्मा के प्रति घृणा कैसे हो सकती है? इसके लिए या तो आत्मा को माफ कर दो या तो माफी मांग लो। ये दो कार्य रोज करने हैं। कौन से कार्य? करते होंगे सभी, परंतु दृढ़ता से करने हैं, कि जिन जिन आत्माओं ने हमें दुख दिया है उन्हें माफ, वो भी कैसा? अनकंडीशनल माफी, बेशर्त, संपूर्ण माफ कर दो। और हमें भी माफ करना है उन आत्माओं को जिन्होंने, एक तो माफ करना, एक तो माफी मांगना। किन से माफी मांगेंगे? माफी मांगना थोड़ा कठिन काम है, तो मन से तो मांग सकते हैं, किन से माफी मांगेंगे? जिनको दुख दिया है, और किससे माफी मांगेंगे? अमृत वेला आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से बात करना और उनसे माफी मांगना। किन से माफी मांगेंगे? जिन जिन को हमने सताया है, जिन जिन को दुख दिया है, पीड़ा दी है, शायद हमारी वजह से उनकी मृत्यु हुई है किसी जन्म में, और जो ये सोचते हैं कि हमारी वजह से उनकी स्थिति नीचे है, उन सभी आत्माओं से क्या करना है? माफी मांगना है। किन किन आत्माओं को धन्यवाद भी दे देना है? कौन सी आत्माओं को धन्यवाद देंगे? सहयोगी, स्नेही, मदद करने वाले। हम बीमार थे, कोई देखने वाला नहीं था, थोड़ी सी हमारी मदद कर दी, सहयोग कर दिया, उनका धन्यवाद। तो हम कहां थे? पवित्रता पर। नेक्स्ट कितने हो गए? पांच, ये था। फिर उसके बाद में है योग। योग में ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान में योग का प्रयोग नहीं, योग में ज्ञान का प्रयोग। कैसे? योग में ये सोचना है कि ज्ञान सूर्य से, ज्ञान की किरणें निकल मुझ में समा रही है। जिस बात का हमारे जीवन में कोई हल नहीं मिल रहा है, ना तो मुरलियों में दिखाई दे रहा है, ना किसी के पास दिखाई दे रहा है, ना किसी किताब में दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट अब उससे ले लो। वो कौन है? ज्ञान सूर्य है। सीधा अमृत वेले जैसे ज्ञान की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है, भर रही है, और वो प्रश्न जो हमारे मन में है उसका उत्तर हमारे सामने आ रहा है। योग में ज्ञान का प्रयोग। या फिर हमारी जो समस्या है जीवन की, उस अशरीरी अवस्था में उस समस्या को लाना बीच में, या तो सूक्ष्म वतन या तो परमधाम, उस स्थिति में पहले स्थित हो जाना अशरीरी अवस्था में, और उस प्रश्न को वहां लाना, और तब उसके विषय में थोड़े एक पल के लिए सोचना, तो तुरंत, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ उत्तर जो प्राप्त होंगे वो अशरीरी अवस्था में प्राप्त होते हैं। हम कितना भी बैठकर चिंतन करें, डायरी लिखे, पत्र लिखे, उत्तर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि देह से तादात्म्य है, जैसे ही आत्मा देह से अलग होती है, देह में रहते हुए उसमें शक्तियां भरती है, वो चिंतन की जो लेवल है बहुत ऊंची है। उस अशरीरी अवस्था में उत्तर प्राप्त होगा, या फिर हर समस्या का उत्तर अशरीरी अवस्था है। जैसे ही आत्मा शरीर के बंधन से बाहर निकलेगी, वो इन तत्वों से भी बाहर निकल जाती है, वो इन तत्वों के दूसरे तत्व जो है, दूसरे जो शरीर है और उसमें जो स्थित आत्मा है, उसके प्रभाव से भी वो मुक्त होती है। और जैसे उस आत्मा के प्रभाव से मुक्त होती है, उस आत्मा के वजह से जो समस्या है वो हल हो जाती है। तत्वों से बाहर निकलना, एक योग का प्रयोग हम आप सबको बताएंगे, फिर इस क्लास को पूरा करेंगे। ये पवित्रता में भी बहुत काम आएगा। अपने ही 84 शरीरों को देखना, अमृत वेले क्या देखना, अपने ही 84 शरीरों को देखना। मैं आत्मा अभी इस तन में, उसके बाद इस तन में, कभी स्त्री शरीर में, कभी पुरुष शरीर में, कभी स्त्री शरीर में, कभी पुरुष शरीर में, कभी देव शरीर में, कभी देवी शरीर में, साक्षी होकर सबको देखना। ये चक्र मैंने लगाया, इधर से इधर, 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 अभी इस तन में हो और मैं आत्मा यहां हूं। धीरे धीरे ये शरीर भी विलीन हो गया, बच गई मैं आत्मा। ये अभ्यास करना तो देह का आकर्षण समाप्त होगा, पहला तो। दूसरा, अपने ही शरीर से जो ममत्व है और इस देह के वजह से आने वाली जो माया है, उससे हम मुक्त होंगे और एक साक्षी भाव आएगा। बाबा ने कहा है, साक्षी भाव वह स्थिति है जिसमें साक्षी की सीट पर बैठ जाओ, जिसमें हर समस्या दबकर समाप्त हो जाएगी, जिसके नीचे दबकर, तो साक्षीपन आ जाएगा और एक न्यू डायमेंशन, एक न्यू होराइजन, एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा उसी समय को, उसी समस्या को देखने के लिए। जैसे सोचो एक पर्वत है, पर्वत में हम एक स्थान पर खड़े हैं, नीचे झील है, उस झील को हम देख रहे हैं। अब सोचो पर्वत के किसी और भाग में खड़े हैं तो कोई और दृश्य दिखाई देता है। पर्वत एक ही है परंतु वो झील को देखने के अलग अलग जगह से हम देख सकते हैं। अभी हो सकता है जीवन में जो समस्या है उसको एक ही दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, कहीं और जाके खड़े हो जाओ तो कुछ और नजर आएगा। तो ये क्या था, योग। योग के हर दिन नए नए प्रयोग करना है, एक ही योग नहीं करते रहना है जो सबसे पहले दिन सीखा था या थोड़े बहुत इधर उधर से जो जाना है। हर दिन अपनी एक नई कमेंट्री लिखना है, हर दिन न्यू कमेंट्री जिसमें कुछ नवीनता हो। अंतिम तो ये हो गया योग। फिर है ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये जब तक नहीं करते तब तक वह घृत जो है वो कम होते जाएगा और फिर दिया बुझेगा और उसी अंधे व्यक्ति की तरह। केवल ये अभिमान हमारे पास तो है कि हमारे पास दिया है पर हम हैं अंधे अभी भी और टकरा रहे हैं। ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना कैसे, मुरली से यह ढूंढना कि इसकी कौन सी पॉइंट है जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आ सकती है। ऐसा क्या है इसमें कि जो हम प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करें। आज की मुरली में खुशी की बात है, एक शब्द खुशी आया, रुक जाओ वहीं पर, प्रश्न तैयार करो खुशी के बारे में, क्या मैं खुश हूं, मेरे दुख के कारण क्या क्या है, क्या मैं करूं जिससे मैं खुश हो जाऊं, क्या कोई दूसरा मेरे दुख का कारण है, क्या कोई दूसरा मेरे सुख का कारण है। दिखाया है महात्मा महावीर जैन धर्म के संस्थापक, एक बार किसी गांव में आते हैं, उनका मौन है, वहां के लोगों ने उन्हें बहुत मारा, कील ठोक दी कानों में, लहूलुहान, इस संसार में जो भी महान आत्माएं आए हैं उन सभी को लोगों ने बहुत तंग किया है, परेशान किया है, सताया है, उसके बाद ही वो सभी महान बने। इतना उसको सताया, पीटा, तीन चार लोग आए, बाद में कोई एक व्यक्ति आके पूछता है, कम से कम आप इतना तो बोल पूछते थे कि मुझे तुम लोग क्यों मार रहे हो, मेरा गुनाह क्या है, मैंने किया क्या है। वो कहते हैं, ये लोग जो मुझे मार रहे हैं मेरे कारण से नहीं मार रहे हैं, वो अपने ही कारण से मार रहे हैं, वो कारण मैं नहीं हूं। बहुत सूक्ष्म बात है, वो कारण जो है इनके ही मन में पनप रही घृणा द्वेष ईर्ष्या, जो इनके मन में उस कारण से ये मार रहे हैं, इनके मन में ये भेदभाव है, इनके मन में प्रॉब्लम है, मेरे इसमें कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं उनका विरोध भी क्यों करूं, मैं इनको कुछ कहूं भी क्यों। वो अपनी साक्षी अवस्था में है, संपूर्ण साक्षी, क्योंकि हम जैसे ही नीचे आते हैं द्वंद चालू होता है, घृणा चालू होती है, ईर्ष्या चालू होती है, एक दूसरे को नीचे दिखाना चालू हो जाता है। भक्ति में हमने एक काम किया था, दूसरे धर्म को नीचे दिखाया, ज्ञान में एक दूसरे को। भक्ति में कौन सा गीत था, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और ज्ञान में आने के बाद इन निर्गुण हारों में, ये जो है ब्राह्मण परिवार, इनमें कोई गुण नहीं, ऐसे होता है ना। लंबा समय जिनके साथ रहते हैं, पास रहते हैं, उनके अवगुण दिखने लगते हैं। इसके लिए संबंध में भी डिटैचमेंट हो, और जिन व्यक्तियों को हम बहुत ज्यादा मानते हैं उनसे तो बहुत ज्यादा डिटैच हो, जो समझते हैं ये हमारे जीवन में आदर्श है, ऐसे व्यक्ति के अगर नजदीक ज्यादा चले गए तो उनके भी अवगुण दिखने लगेंगे। फिर कितनी बातें हुई, 7 पूरी हुई। सबसे पहला तो अभी ये 7 बातें अर्थात 7 होमवर्क सभी को करना है। सबसे पहला ज्ञान में इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसके लिए बाकी जो जो चीजों में इंटरेस्ट है उसको कम करना पड़ेगा इंटरेस्ट। फिर उसके बाद मनन, जो जो मनन नहीं करते उन्हें मनन चालू करना है। कैसे चालू करेंगे, छोटी सी पॉइंट से चालू करो कोई भी, जैसे आज की ही मुरली में जो लिखा है, जो सेवा डिस्टर्ब करती है, कौन कौन सी सेवा डिस्टर्ब करती है लिस्ट बनाओ। होमवर्क आप सभी के लिए आज से ही, सेवा में डिस्टर्बेंस के 10 कारण कौन कौन से हैं। यहां से जाने के बाद रात को सोने से पहले अपनी डायरी में लिखना है सेवा में वो कौन कौन सी बातें हैं जो डिस्टर्ब करती है। जब ये करेंगे तब कहीं जाकर वो स्लोगन समझ में आएगा, क्योंकि यहां हम चिंतन कर रहे हैं। तीसरा अध्ययन, अध्ययन के लिए और एक महत्वपूर्ण बात, टाइम निकालना पड़ेगा। सेवाओं का विस्तार इतना ज्यादा है कि अध्ययन का समय कम है, स्वयं को स्वयं की दिनचर्या अनुसार ही टाइम निकालना पड़ेगा। शायद हमारा टाइम बहुत ऐसी ऐसी चीजों में जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए होता, व्यर्थ की बातें, परचिंतन की बातें, लौकिक की बातें, भोजन की बहुत सारी बातें, ये सारी बातें शायद निगेटिव बातें हमारा टाइम खींच के लेती। टाइम को चुराना है, क्या करना है, चुराना है उसको, चोरी करनी है उसकी। जहां जहां टाइम मिले तुरंत स्लोगन याद करो उसका विस्तार करो, वरदान याद करो उसका विस्तार करो, महावाक्य याद करो उसका विस्तार करो, ज्ञान में बुद्धि को लगाना है। तो ज्ञान की चर्चा, ज्ञान का अध्ययन और ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की चर्चा के लिए रात में कुमार अगर है तो कुमार अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाए, जो कि रात में बैठे सोने से पहले, क्योंकि रात में सोने से पहले हमारी जो स्थिति है, सोने के समय का जो संकल्प है वो सुबह उठते ही पहला संकल्प बनता है। यदि टीवी देखते देखते सो रहे हैं, मोबाइल में बात करते करते सो रहे हैं, तो स्थिति श्रेष्ठ नहीं होगी। स्थिति श्रेष्ठ होने के लिए सोने की विधि पर एक मुरली है पूरी 95 में, व्यक्तवाणी है पूरी, उसमें तो बाबा ने यहां तक कहा है अगर सेवा समाचार सुनाना है कमरे से बाहर जाकर सेवा समाचार सुनाओ फिर अंदर आके सो, नहीं तो फिर विकारी स्वप्न आएंगे, अरमान आएंगे, ब्रह्मचर्य खंडन होगा। तो सोने की विधि, तो चर्चा, फिर ज्ञान, योग ज्ञान, फिर योग पवित्रता, और अंतिम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। रोज की मुरली से ढूंढना है कि इस बात को मैं अपने जीवन में कैसे अप्लाई करूं। ऐसा ना हो जाए कि प्लानिंग बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि थियोरी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। इन और एक लास्ट बात, एक मुरली है 25 मार्च 1971 की, जिसमें बाबा ने इंचार्ज की परिभाषा दी है। टीचर बहनों से मुलाकात, बाबा कह रहे हैं इंचार्ज, अर्थात इंचार्ज के अर्थ सुनाए हैं। इंचार्ज अर्थात जो स्वयं के चार्ज हो, जिसका स्वयं की इंद्रियों पर चार्ज हो, मन बुद्धि संस्कार पर चार्ज हो, अधिकार हो। दूसरा चार्ज अर्थात होता है ड्यूटी, और तीसरा चार्ज होता है अगर ये दो काम नहीं करोगे तो तुम पर चार्ज लगेगा धर्मराज का। बाबा ने उस मुरली में कहा है कि ये कभी मत समझना मैं इंचार्ज हूं। लास्ट संडे की मुरली, कुमारों से मुलाकात, दो शब्द विशेषता चाहिए, निमित्त भाव और निर्माण। निमित्त और निर्माण, सेवाओं में ये दो विशेषता नहीं तो पर्दा आ जाएगा, क्या करूं कैसे करूं, कंफ्यूज हो जाएंगे, सेवाओं में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस संगम युग पर जो भी हम कर रहे हैं, ईश्वरीय कृपा दया आशीर्वाद या वो करा रहा है। सूरज भाई जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, एक बहन जिसने शरीर छोड़ा बाबा के पास पहुंची, एक ऐसी बहन जिसने लाखों की करोड़ों की सेवा की है, कई आत्माओं को बाबा का संदेश दिया है, परमात्मा संदेश सारे विश्व भर में फैलाया है। बाबा पूछते हैं बच्चे तुमने क्या किया, भगवान वो पूछ रहा है, खुद नहीं बता रही है, बाबा पूछ रहे हैं बच्चे तुमने क्या किया, तो वो कहती है बाबा मैंने ये किया, मैंने इतने सेंटर खोले, मैंने इतनों का कोर्स कराया, मैंने ऐसी ऐसी सेवाएं की, मैंने इतने भाषण किए, खुद नहीं बताया, पूछा तब बताया, इतनी इतनी कन्याओं को ये किया वो किया ऐसा किया, और लास्ट में बाबा ने एक शब्द कहा, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया। तो ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। अच्छा, ओम शांति।